इंग्लिश होनी चाहिए, इसका कुछ इल्म ही ना हो, बल्कि एक्चुअली हमने ये सीखने जाना है वहां पे। तो खैर ज़ादे तक्वा, असल चीज तो तक्वा थी जो तुम्हें साथ लेके जानी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत थी जो साथ लेके जानी चाहिए, उसका ताल्लुक था जो साथ लेके जाना चाहिए, वो तुम साथ ना लेके जाओ, बाकी हर चीज दुनिया के साथ हो ऐसा ना करो। फिर अगला अदब ये के जाने से पहले सलात हाजत पढ़े कि अल्लाह ताला सफर में आसानी कर दे, तो इन दो नफल पढ़े, नियत कर ले के हाजत के हैं, जरूरत अल्लाह से जरूरत मांग रहा हूँ और सफर की जरूरियात और में आसानियां हो, सफर में आसानियां हो, इस चीज को अल्लाह से मांगे। फिर अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, और दुआओं में क्या अहम चीज है कि तौबा करना कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर, मेरी मगफरत कर दे, अपने गुनाहों को याद कर। और ये तन्हाई की जो अल्लाह ताला से माफी होती है, ये इंसान के कल्ब को इंतहाई मुनव्वर कर देती, ग्लोरीफाई कर देती, उसको चमका के रख देती। तन्हाई में अल्लाह ताला से माफी मांगो, क्योंकि एक सबके सामने ये करना उससे भी दिल चमकता। लेंगे तन्हाई में जब इंसान करता, खासतौर पर रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त, इंसान के कल्ब मुनव्वर हो जाता और उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला की वो कैफियात उतरती है जिसके मुतालिक से हम बातें कर रहे हैं। बल्कि ये सारी हकायक की हकीकतें हैं, इंसान को अल्लाह से वाकई ऐसी मोहब्बत हो जाती है, वाकई ऐसा ताल्लुक हो जाता है कि वो चाहता है उसका इजहार करना, और जिनको है उनको पता चलता है वहां जाके कि तो आपसे ज्यादा क्या होता है, कि कैसे अल्लाह ताला की वाकई देखने वाले वाकई अल्लाह की तजलियात वहां का मुशाहिदा करते हैं, तो कल पे उसको फील करते हैं जब उनका कल मुनव्वर हो जाए। तो तौबा बहुत अहम अमल है। तौबा में तीन काम जरूरी है, तौबा करने में तीन काम जरूरी है। एक होता है कि पुराने गुनाहों को याद करें, माफी मांगना, ठीक है, यानी एक पास से रिलेटेड, क्योंकि गुनाह हो चुके हैं तो पास से एक निदामत हो कि मैंने क्यों कर दिए, मुझे नहीं करने चाहिए, तो ये निदाम है। प्रेजेंट में अब इरादा है कि अब आइंदा नहीं करूंगा, और आइंदा क्या करना है कि एक तो जो जो गुनाह के उसको हेल्पर हैं, वो इंसानों की सूरत में है या इंस्ट्रूमेंट की सूरत में है, उनको अपने से दूर करना है, इन्होंने मुझसे गुनाह कराया, इस दोस्त ने कराया, इसने कराया, अगर वो तौबा नहीं कर रहे तो उसकी दोस्ती खत्म कर, या फलां इंस्ट्रूमेंट से मैंने गुनाह किया, अगर वो उसको मैं निकाल सकता हूँ अपनी जिंदगी से, उसको निकाल। और तीसरी चीज फ्यूचर में क्या करनी है कि अगर नमाजें हैं, गवाह हुई हैं, तो नमाजों को लौटाना, कि याद करे, एक लिस्ट बनाए कि ये नमाजें मेरी इसी जिंदगी में गवाह हुई हैं, उनको उनको अदा करना। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करे कि मैं 14 साल की उम्र बालिग हुआ था, अब मेरी साल 35 साल मेरी उम्र है, तो 21 ईयर्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितनी नमाजें कज़ा की होंगी, फजर की कितनी की होंगी, ज़ोहर की कितनी की होंगी, असर की कितनी की होंगी, मगरिब की कितनी की होंगी, ईशा की कितनी, तो उस कैलकुलेट करके उसके हिसाब रफली, यानी ऑब्वियसली एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन नियर टू मतलब के जो गालिब गुमान जैसे कहते हैं कि जो उसकी अप्रॉक्सीमेशन जितना वो कर सकता है वो करे, कैलकुलेट करे और फिर इरादा करे कि मैं इसकी कज़ा करूँगा इन नमाजों, उसकी डायरी बना लेनी चाहिए कि ये नमाजें मेरी इतनी कज़ा हूँ, ये भी तौबा में शामिल। फिर रोजे कैलकुलेट करे कि उस वक्त से लेके आज तक मैंने कितने रोजे मैंने छोड़े, उसकी एक लिस्ट बनाए। फिर इसी तरह ज़कात, उस वक्त से लेके अब तक कितनी मैंने ज़कात अदा नहीं की, और इस बारे में इंसान अक्सर गलतफहमी में रहता है कि सोचता है कि माल बहुत हो तो इंसान ज़कात देगा, या कमाना शुरू करे तब ज़कात देगा, ऐसी बात नहीं है। देखा जाता है कि उसकी मलकियत में माल कितना है। इवन 14-15 साल की उम्र में जब मैं कुछ नहीं कमा रहा था, लेकिन लोग कोई मुझे ईदी देता था, कोई मुझे गिफ्ट देता था, कोई मुझे पेरेंट्स मुझे चीजें ला के देते थे, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, और कई बार मैं वो खर्च नहीं करता था, उसको जमा करता रहता था, जमा कर करके उस वक्त, यानी आज तो हो सकता है चांदी सोने की कीमत ज्यादा हो गई हो, लेकिन उस वक्त आज से 20 साल पहले चांदी की कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत हो सकता है 10,000 रुपये हो, यानी अगर वो आज 70,000 या 80,000 है तो उस वक्त तो शायद 10,000 रुपये हो, तो उस वक्त मेरे पास जोर से ज्यादा 10,000 रुपया था, तो उस वक्त मुझे ज़कात लगती थी, मैंने उस वक्त अदा नहीं की, ना जानने की वजह से या जिस वजह से भी, तो मैं कैलकुलेट करूँ, हो सकता है उसमें मेरे पास 20,000 रुपया पड़ा हो, तो 10,000 उस 20,000 रुपए में मुझसे ज़कात थी, उसका 2.5% मुझे अब रफली कैलकुलेट करूँ और अब उसको अदा करूँ, वो माफ नहीं होगी मेरे जिम्मे। तो इस तौबा में ये सारे अवामिल शामिल है, ये सब कुछ करना, खासतौर से ज़कात को जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में और लेडीज के अंदर भी खास तौर पे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शायद शौहर ने ज़कात अदा कर ली। अगर उनके पास सोना पड़ा हुआ है और वो उसकी मालियत और जो नकदी पड़ी है, तो उस सारा कुछ कैलकुलेट करके ज़कात अदा करनी होती है। डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, और उनके जिम्मे होती है। अगर शौहर अदा कर रहे हैं वेल एंड गुड, उसका एहसान है बीवी से, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो उनके जिम्मे से माफ नहीं हो जाती। इसलिए ज़कात के बारे में डिटेल्स मालूम करके उसको अदा करना, कैलकुलेट करके पिछले जब सबालिंग हो, इसी तरह किसी का कर्ज लिया हुआ है तो उसको देना, और ये जहन में रहे कि कर्ज लेके हज उमरा में नहीं जाना चाहिए, बल्कि कर्ज अदा करके जाना चाहिए, तब कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 लाख किसी से कर्ज लिया है, मैं 2.5 लाख में हज कर रहा हूँ, तो नहीं, वो 2 लाख उसको वापस कर रहा हूँ, 50,000 है अभी मुझ पर हज की फर्ज हुआ, फिर 2.5 लाख आ जाएगा, फिर हज फर्ज होगा। तो दूसरे का कर्ज वापस करना, इसी तरह दूसरे को जो जानी और माली नुकसान पहुंचाया, कभी किसी को बुरा भला कहा, कभी किसी को मार दिया, तो उससे माफ कराना अगर वो जिंदा है और माफी मांगी जा सकती, और इसमें बीवी बच्चे भी शामिल हैं। फिर बीवी ने शौहर को बुरा कहा, शौहर ने बीवी को बुरा भला कह दिया, तो उससे माफी मांगे। इसी तरह बच्चों से ज्यादती कर बैठे, गुस्से में आके मार दिए बच्चे, तो वो कोई माफ तो नहीं हो गया, उससे माफी मांगे, और बालिग होने के बाद उससे माफी हो गई, और बलूग से पहले उसकी माफी मुतबर नहीं है, तो बालिग जब हो जाए उससे माफी मांगे कि उस वक्त मैंने तुम्हें ज्यादती करके मारा था, तुम्हारा यानी एक तो गलती में मानना है, तादीबन मानना, अदब सिखाने के लिए मानना, वो एक अलग चीज है, लेकिन बिला वजह किसी को मार देना गुस्से में आके और हद से ज्यादा मार देना, वो उस पर ज्यादती होती है। तो उसको भी ये सारी माफियां मांग के, और अगर माफी नहीं मांग सकता तो फिर मिसाल के तौर पर फौत हो गया माल, फिर भी यानी किसी का माल देना था वो फौत हो चुका, अब उसके बच्चों को माल दे, क्योंकि उसका माल उसके बच्चों के हक बन चुका है मिराज में विरासत, तो उस उनको माल देना, क्योंकि कहना तुम्हारे बाप का ये मैंने माल देना था, ये तुम ले लो और आपस में तकसीम करो, माफ नहीं हुआ। लेकिन अगर ये ऑप्शन भी खत्म हो गई है तो तब फिर ये है कि उस माल को सदका कर दे, यानी जो किसी का देना था ना उसका पता रहा, ना खैर का पता रही वो कहाँ गया, ना बच्चों का पता है, तो फिर उसको अल्लाह के रास्ते में उसको सवाब की नीयत से सदका कर दे। और अगर किसी को जानी माली जान का नुकसान दिया था, कोई जुबान से नुकसान दिया था और वो मौजूद नहीं है या उससे रब्ता नहीं है, तो फिर उसके लिए दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे या वो फौत हो जाए, ये सारा तौबा के अंदर शामिल है। तो ये बात की जा रही है हज से पहले सारे काम करे अगर वो चाहता है कि उसका हज कबूल, तो ये प्लानिंग में शामिल है, जहाँ वो वादे सफर सामान साथ रख रहा है तो ये भी साथ रखे, तौबा कामिल करे, मामूली ने इस बात से समझा, खासतौर पर नमाजों, ज़कात और दूसरों के माली हकूक का बहुत कैलकुलेट करे। तो इंशाल्लाह हज का तरीका नमाज के बाद कर लेते हैं, एक दो और अदब मैं बता देता हूँ। इसी तरह सदका करना, हज पे जाने से पहले और दौरान हज सदका करता रहे, कुछ ना कुछ 5 रियाल 10 रियाल या जिनके पास वो दूसरों को देता रहे, सदका करता रहे, क्योंकि इससे भी मुश्किलात आसान होती हैं, इंसान से जो गलतियाँ होती हैं वो माफ होती रहती हैं। इसी तरह सफर के दौरान जिस जिसको सलाम कर सकता है रास्ते में मिले, सलाम का इस्तेमाल करे, सलाम करता रहे, ये भी वैसे इंसान को आदत होनी चाहिए, ये भी रखे। इसी तरह जो एक ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपना एक अमीर मुंतखब कर लें, एक अपना लीडर मुंतखब कर लें और उसकी बात माने, और उसमें ये अहम चीज़ है कि उसके डिसीजन को कभी आर्ग्यू ना करें, न जहन के अंदर न जुबान से, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये होगा, ये भी ग्रुप जा रहे हैं जो लोग हज पर जा रहे हैं, होगा हर एक लीडर ना दिया जाएगा, ये लीडर। अब ये भी आप नोट करेंगे कि ये भी होगा कि उसके हर डिसीजन को आर्ग्यू किया जाएगा, यानी मेजोरिटी टाइम उसको कहेंगे नहीं ये नहीं।